दूसरा इतिहास अध्याय 29 पद 1। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। ये रुचिकर है कि जितना दुष्ट आहाज था उतना ही भला हिजकिय्याह था। वो एक आत्मिक राजा था। हो सकता है कि उसने अपने पिता की मूर्खता देख देख कर सीखा। ये एक रोचक बात है कि आहाज जैसे नास्तिक मनुष्य के पास हिजकिय्याह जैसे आत्मिक पुत्र था। अब हिजकिय्याह राज्य करने लगा। वो यशया नबी से बहुत प्रभावित था। यही कारण था कि हिजकिय्याह इतना अच्छा राजा था। जब हिजकिय्याह ने शासन आरंभ किया तब उसने उन मूर्तियों और प्रतिमाओं को तोड़ डाला जो उसके पिता ने स्थापित की थी। उसने अपने पिता के सब इस निंदा के कार्यों को खत्म किया। अध्याय 29 पद 2 से लेकर 11 तक। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व की चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके ये कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि से बुरा है और उसको तच करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इसराइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। अब मेरे मन ने ये निर्णय किया है कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधू, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों ढिलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। सबसे पहले हिजकिय्याह ने जो सुधार कार्य किया वो था यहोवा की आराधना का पुनस्थापन करना। मंदिर बंद हो गया था, बहुत कूड़े कबाड़ से भर गया था और उसके दरवाजे बंद थे। वे लोग अब प्रतिदिन की बलि नहीं चढ़ाते थे और न ही वे दीपक जला रहे थे। उन्होंने आहाज के शासनकाल में परमेश्वर की उपासना को त्याग दिया था। हिजकिय्याह ने इसे पुनस्थापित करने का निर्णय लिया। उसने सभी याजकों को बुलाकर कहा, अब अपने आप को पवित्र करो और आराधना फिर शुरू करो। मैंने परमेश्वर की आराधना करने को वाचा बांधी है। वो लोगों को पुनः परमेश्वर की आराधना करने में ले गया। अध्याय 29 पद 15 से लेकर 16 तक। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। अशुद्ध वस्तुओं को घाटी में फेंक दिया। अध्याय 29 पद 17। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के आठवें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया और पहले महीने के सोलहवें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। इस तरह उन्होंने मंदिर की प्रत्येक वस्तु को पवित्र किया और शोधन का विधिवत पालन किया। शोधन के लिए पूरी विधि अपनाई जाती थी जिसमें काफी दिन लगते थे। एक बार में एक वस्तु का शोधन किया जाता था, फिर पवित्र स्थान का शोधन, भेंट की रोटी की मेज का शोधन, जलाए जाने वाले तेल का शोधन, बत्तियों का शोधन। इस पूरे काम में आठ दिन लगे। बत्तियों में जो तेल जलाया जाता था उसको पवित्र किया जाता था। उन्होंने इस प्रक्रिया को आरंभ किया। महीने के पहले दिन उन्होंने शोधन का काम आरंभ किया। वे पहले महीने में थे और फसा का पर्व आने वाला था, परंतु पहले महीने में उनके पास इतना समय नहीं था कि फसा के पर्व के लिए सब ठीक कर सके। मूसा की व्यवस्था में ये समाधान था कि यदि कोई पहले महीने के चौदहवें दिन को फसा का पर्व ना मना पाए तो दूसरे महीने के चौदहवें दिन को मना सकते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि फसा का पर्व एक बार और मनाया जाएगा। उनके इतिहास में ऐसा होता रहा था। वर्षों से उन्होंने फसा नहीं मनाया था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे पर्व को फिर से आरंभ करेंगे कि फसा का पर्व परमेश्वर के लिए मनाया जाए। इसलिए उन्होंने सारे देश में निमंत्रण भेजा कि सब लोग दूसरे महीने में फसा का पर्व मनाने के लिए आए। उनकी एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने समरिया उत्तरी राज्य में भी लोगों को निमंत्रण भेजा कि वे भी आए, और इस तरह उन्होंने पर्व बड़े उत्साह से मनाया। उन्होंने मंदिर में आराधना पुनर्स्थापित की। अध्याय 30 में हम फसा के बारे में पढ़ेंगे, परंतु मंदिर में आराधना की पुनर्स्थापना पद 27 में मिलती है। अध्याय 29 पद 27। तब हिजकिया ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी और होमबलि चढ़ने लगी। तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरिया और इसराइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। दाऊद ने बहुत से संगीत वाद्य यंत्र बनाए थे और संगीतकारों को नियुक्त किया था। जब उन्होंने बलि भेंट चढ़ानी आरंभ की तब उन लोगों ने गीत संगीत और परमेश्वर की आराधना पुनः आरंभ की। कितना भव्य दृश्य! परमेश्वर की आराधना मंदिर में पुनः स्थापित हो गई। अध्याय 29 पद 28। और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरी फूंकने वाले फूंकते रहे। ये सब तब तक होता रहा जब तक होमबलि चढ़ ना चुकी। होमबलि शोधन की बलि थी। उन्होंने पाप बलि चढ़ाई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और फिर होमबलि चढ़ाई। आपको याद होगा कि हिजकिया ने कहा था, मैंने परमेश्वर की सेवा करने की वाचा बांधी है, इसलिए उसने होमबलि चढ़ाई। होमबलि मनुष्य के शोधन के लिए होती थी। ये मेरे जीवन का पवित्रकरण है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। बाइबल कहती है रोमियो 12 अध्याय पहला पद, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरे शब्दों में मेरा शरीर परमेश्वर का है। मैं अपना शरीर परमेश्वर को देता हूं। मैं अपने शरीर को पवित्र करता हूं और अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं। यही व्यक्त करने के लिए होमबलि चढ़ाई जाती थी, पवित्रकरण की बलि। अध्याय 29 पद 30। और राजा हिजकिया और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। तब उन्होंने गीत गाने आरंभ किए। अध्याय 29 पद 30 और 31। और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तब हिजकिया कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम कानूनन धर्मी हो सकते हैं, ये असंभव है। परमेश्वर की आराधना सदा हृदय की सुइच्छा से होती है। आप लोगों को परमेश्वर की आराधना के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वो तो सदा हृदय की स्वतंत्रता से होती है। वो कभी भी मजबूरी से नहीं होती, वो कभी भी दबाव से नहीं होती। जो कुछ भी आप स्वयं चढ़ाते हो वो आपकी हृदय की स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। इसलिए लोग जिनके पास आराधना करने की स्वतंत्र इच्छा थी आराधना करने आए। अध्याय 29 पद 36। तब हिजकिया और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वो काम एकाएक हो गया था। ये शीघ्रता का कार्य था।